ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में श्री मोदी का रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और वहां के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा से भेंट करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों, व्यापार प्रतिनिधियों और पोलैंड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल के क्षेत्र में कल समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नागरिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए गए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें एक नई ऊर्जा आई है। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और वहां के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने बैठक में हिस्सा लिया। रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर विचार किया गया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर के साथ साझेदारी में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान आईआईसीए ने कल गुरुग्राम के मानेसर में रक्षा अधिकारियों के लिए अपनी तरह के पहले प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 सप्ताह के इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के 30 वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 31 अगस्त को सम्पन्न होगा। राज्य तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संगठन के राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रमुखों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन कल नई दिल्ली में किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के परिदृश्य में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फर्जी पंजीकरणों की पहचान और छटनी करने के लिए किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने इस विशेष अभियान के दौरान फर्जी पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र तथा राज्य जीएसटी गठन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन गतिविधियों और व्यापार की सुगमता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर में फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद 90,000 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके बाद अब क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 88,03,000 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 1 जुलाई 2024 की अर्हता तिथि वाली फोटो मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कल नई दिल्ली में मानव निर्मित कपड़ा परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिबद्धता, सफलताओं, अनुभव, फीडबैक और योजनाओं से जुड़ी चुनौतियों को साझा किया। श्री सिंह ने प्रतिभागियों की भागीदारी और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा साझा की गई प्रतिक्रिया और विचार अमूल्य हैं और कपड़ा क्षेत्र में सफलता सहयोगात्मक प्रयासों और खुले संचार पर निर्भर करती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले कल सरकार ने आयोग से ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने को कहा था। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 30 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।